सभी को नमस्कार। गुरुदेव जी के भावपूर्ण स्मरण से, उन्हें आर्द्रता से प्रार्थना करते हुए आज के भाव सत्संग का हम आरंभ करेंगे। गुरुदेव जी का स्मरण करते ही अपनी आंखों के सामने गुरुदेव जी का सुंदर, मनमोहक एवं तेजोमय रूप दिखाई देने लगा है। गुरुदेव जी के दिव्य रूप के हम दर्शन लेंगे। अपना अंतरंग गुरु कृपा से अनुभव किए सुंदर भावक्षणों के स्मरण से डोलने लगा है। इस भावमय स्थिति में ही अब हम गुरुदेव जी के परम चरणों की शरण जाकर उनसे प्रार्थना करेंगे। हे गुरुदेव, हमारे उद्धार के लिए, हमारा जीवन सार्थक करने के लिए आप ही हमें अपनी चैतन्यमय ऊर्जा, आपका प्रचंड तेज और शक्ति के माध्यम से प्राणवायु प्रदान कर रहे हैं। हम साधकों को जीवित रहने के लिए आप श्वास प्रदान कर रहे हैं। हमारी प्रत्येक श्वास आप ही की कृपा है। गुरुदेव, आपके सुंदर दिव्य भावक्षणों के कारण अब भी हमारा हृदय मंदिर आपके प्रति भावभक्ति से भर गया है। हे गुरुदेव, हमारे जन्मदाता कर्मदाता तो आप ही हैं, इसीलिए हमारी प्रत्येक श्वास पर भी केवल आप ही का अधिकार है। आप जो हमें श्वास प्रदान कर रहे हैं, उस प्रत्येक श्वास द्वारा हम आपके चरणों में समर्पित हो पाए। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रार्थना है। सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और अनादि अनंत साक्षात गुरुदेव जी के चरणों में श्लोक के माध्यम से हम भावपुष्प अर्पण करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भाव सत्संग द्वारा भक्ति पाठ सीखने आए सभी गुरु भक्तों को मेरा भावपूर्ण नमस्कार। गुरुदेव, हमारे आनंद के लिए प्रत्येक भाव सत्संग में नए नए सूत्र लेकर आते हैं। कोई बंद कली खिलकर फूल बने और उसकी दिव्य सुगंध सर्वत्र फैले, उसी प्रकार भावभक्ति की महिमा से युक्त विविध पंखुड़ियाँ गुरुदेव हमारे सामने खोल रहे हैं। उसकी दिव्य सुगंध हम सभी के अंतकरण में प्रवेश कर हमारा अंतकरण प्रफुल्लित कर रही है। भावभक्ति के दिव्य पुष्प की ही एक पंखुड़ी है नागदेवता की भक्ति। ये सुंदर पंखुड़ी साक्षात गुरुदेव जी ने हमारे सामने खोली है। वर्तमान में चातुर्मास चल रहा है। चातुर्मास ये ईश्वरीय उपासना और व्रत वैकल्यों का काल है। इस चातुर्मास में भावभक्ति बढ़ाने का व्रत हमें लेना है। भावभक्ति बढ़ाने का व्रत लेकर हम सभी भगवान का कृपाशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रावण मास का प्रथम त्यौहार नाग पंचमी, इसके निमित्त हमने नाग देवताओं से भक्ति सीखी। अब श्रावण मास के अगले त्यौहार के निमित्त से वे हमें भावभक्ति युक्त कौन सा दिव्य अमृत कुंभ दे रहे हैं, इसकी भी हम अनुभूति लेंगे। श्रावण मास का दूसरा त्यौहार है रक्षाबंधन। इस रक्षाबंधन के निमित्त से हम अपने भगवान जो हमारे सर्वस्व है, उनसे नाता दृढ़ कर उनके चरणों में समर्पित होंगे। रक्षाबंधन ये बहन और भाई का प्रेम दर्शाने वाला पवित्र त्यौहार है। इस निमित्त से भगवान आज हमें बहन एवं भाई का नाता कैसा होना चाहिए ये सिखाएंगे। इसके लिए कौन सा आदर्श वे हमारे सामने रखेंगे? वो आदर्श है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी। माया के विश्व के सभी नातों के परे जाकर भगवान से अपने जन्म जन्म के नाते अनुभव कर, वही अपना सखा और सर्वस्व कैसे है, इसकी दिव्य अनुभूति भगवान हम प्रत्येक को आज देने वाले हैं। द्रौपदी की श्री कृष्ण भक्ति और श्री कृष्ण की विविध लीलाओं से आज हम वो सीखेंगे। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की सखी और आदर्श भगवत विश्वास की श्रद्धा की मूर्ति थी। वह पांचाल नरेश राजा द्रुपद की अयोनिजा कन्या थी। द्रौपदी की उत्पत्ति यज्ञ वेदी से हुई थी, इसीलिए द्रौपदी को याज्ञसेनी भी कहते हैं। उसका रूप लावण्य अनुपम था। उसकी अंग कांति सावली होने से उसे कृष्णा भी कहते थे। उसके शरीर से खिले हुए कमल की मधुर सुगंध आती थी। ये कमलगंध एक कोस तक फैलती थी। जब द्रौपदी यज्ञ कुंड की अग्नि से प्रकट हुई, तब आकाशवाणी हुई थी। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए और दुष्ट क्षत्रियों के संहार के उद्देश्य से ही इस रमणी रत्न की उत्पत्ति हुई है, अर्थात दुष्ट क्षत्रियों के नाश का निमित्त होने हेतु भगवान द्रौपदी को पृथ्वी पर लाए थे। द्रौपदी में उच्च कोटि की पवित्रता और भगवत भक्ति थी। उसकी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कभी भी न ढलने वाली अविचल प्रीति थी। वो श्री कृष्ण को अपना सखा, अपना रक्षक, हितचिंतक और परमात्मीय मानती थी। इसके साथ ही श्री कृष्ण की सर्वव्यापकता और उनकी सर्वशक्तिमानता पर उसे संपूर्ण विश्वास था। द्रौपदी की श्रद्धा थी। भगवान श्री कृष्ण पर श्रद्धा और प्रीति अनुभव करवाने वाले एक सुंदर प्रसंग द्वारा आज भगवान भावपुष्प की पंखुड़ी खोलेंगे। ये प्रसंग सुनते समय हम अपने अंतकरण में अनुभव करेंगे। हम सभी के अंतर में भावपुष्प की एक एक पंखुड़ी भगवान की कृपा से कैसे खिल रही है ये अनुभव करेंगे। भगवान श्री कृष्ण उस समय पांडवों के पास थे। देवर्षि नारद भी उनके साथ थे। तब श्री कृष्ण की उंगली में कुछ लग गया, उस घाव से रक्त आने लगा। रक्त बहना रुक जाए इसलिए उंगली पर बांधने के लिए देवर्षि नारद कपड़े की चिंदी ढूंढने लगे। वह इंद्रप्रस्थ का राजमहल था। सर्वत्र वैभव, संपत्ति, संपन्नता थी, कोई कमी नहीं थी। ऐसे राजमहल में चिंदी कहाँ मिलेगी? तब देवर्षि को श्री कृष्ण की सगी बहन अर्जुन पत्नी सुभद्रा इनका स्मरण हुआ। देवर्षि नारद सुभद्रा के महल में गए और बोले, सुभद्रा, भगवान की उंगली में घाव हो गया है, उससे रक्त बह रहा है। उनकी उंगली पर बांधने के लिए तुम्हारे पास कोई चिंदी है क्या? चिंदी है तो दो। नारद की ये बात सुनकर सुभद्रा विचार करने लगी। वह बोली, हे देवर्षि, मेरे पास तो शालू और पैठणी जैसी भारी जरी वाले वस्त्र ही हैं, चिंदी देने जैसा कोई भी कपड़ा नहीं। ये सुनकर देवर्षि नारद तुरंत चिंदी मांगने के लिए द्रौपदी के महल में गए। द्रौपदी श्री कृष्ण की मानी हुई बहन थी। वह रानी और साम्राज्ञी होने से उसके पास सभी मूल्यवान और जरी वाले ही वस्त्र थे। देवर्षि नारद ने द्रौपदी से भगवान की उंगली को लगे घाव के विषय में बताया। हे द्रौपदी, भगवान की उंगली में चोट आई है, रक्त की धार लगी है। तुम्हारे पास कोई चिंदी है तो दो। नारायण की उंगली में बांधनी है, जिसका मुझ द्रौपदी पर अत्यधिक प्रेम है, जो प्रत्येक संकट में सदैव मेरे साथ है। ऐसे श्री कृष्ण की उंगली से रक्त की धार बह रही है। ये सुनते ही द्रौपदी का मन विवल हो गया। द्रौपदी के नेत्रों में पानी भर आया, उसे भी वेदना हुई। श्री कृष्ण का हम पर कितना ऋण है, उसका उसे तुरंत स्मरण हुआ। वह नारद से बोली, हे देवर्षि, मैं तो उस साक्षात भगवान की, श्री कृष्ण की कोई भी नहीं हूँ, तब भी उन्होंने मुझे अपनी बहन माना है। उनका मुझ पर कितना बड़ा उपकार है। हे ऋषिवर, मैं उस भगवान के लिए वस्त्र का टुकड़ा ही क्या, अपने हृदय का टुकड़ा देने के लिए भी तैयार हूँ। बिना कोई विचार किए द्रौपदी ने क्षण भर में ही अत्यधिक सहजता से अपने भर्जरी वस्त्र फाड़कर श्री कृष्ण के लिए चिंदी दी। देवर्षि नारद द्रौपदी को आश्चर्यचकित होकर देखते रहे। द्रौपदी की भक्ति देखकर वे अवाक हो गए। वे चिंदी लेकर भगवान के पास गए और उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाया। द्रौपदी के बहुमूल्य वस्त्र की वो चिंदी देखकर श्री कृष्ण को बहुत आनंद हुआ। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी पर प्रसन्न हुए। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान उस चिंदी के रूप में अपने भक्त के अर्थात द्रौपदी के बंधन में हमेशा के लिए ही बंध गए। द्रौपदी की कृष्ण भक्ति कितनी श्रेष्ठ है, ये दिखाने के लिए भगवान ने ये लीला रची थी। द्रौपदी को पता था भगवान के सामने उनका कोई मोल नहीं। भगवान के सामने वस्त्र का मूल्य शून्य था। भगवान संबंधी इस आंतरिक और दृढ़ बांध में वो प्रत्येक क्षण जी रही थी, और इसीलिए वे वस्त्र अत्यंत सहजता से फाड़ सकी। इस प्रसंग द्वारा भाई और बहन का नाता कैसा होना चाहिए, खरा नाता कैसा होता है, ये श्री कृष्ण ने हमें सिखाया। धन्य है वे श्री कृष्ण और धन्य है द्रौपदी। वास्तव में ये सुंदर प्रसंग हम सभी को पता ही है। परंतु इससे हम भाई बहन के प्रेम की अपेक्षा भगवान और भक्त का विलक्षण नाता समझ लेंगे, सीख लेंगे और भगवान के विषय में वह प्रेम और वो भक्ति आत्मसात करने का हम प्रयत्न करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के लिए वह द्रौपदी की केवल एक चिंदी नहीं थी, अपितु उस चिंदी के रूप में उसका अनमोल भगवत प्रेम था, श्री कृष्ण के प्रति समर्पण था। द्रौपदी के समर्पण से श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। उसकी उस चिंदी का मोल भगवान ने जाना और उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, एक दिन तुम्हारी इस चिंदी का ऋण मैं अवश्य चुकाऊंगा। तदुपरांत द्रौपदी पर जब जब कठिन प्रसंग आए तो प्रत्येक बार भगवान उसके एक पुकार सुनते ही क्षण भर का भी विलंब न किए उसकी सहायता के लिए दौड़कर आए थे। ये हम सभी को पता ही है। द्रौपदी वस्त्र हरण के प्रसंग में श्री कृष्ण ने उसके वस्त्र की आपूर्ति कर उन पर चिंदी का जो ऋण था वो चुकाया और उसकी लाज की रक्षा की। भगवान की अद्भुत लीला की अनुभूति देने वाले इस दिव्य प्रसंग का अब हम अवलोकन करेंगे। कौरवों का मन सदैव ही पांडवों के प्रति के द्वेष से कलुषित रहता था। उसी षड्यंत्र का एक भाग था पांडवों को द्यूत खेलने के लिए बुलाना। उस द्यूत में उन्होंने पांडवों की सर्व धन संपत्ति और राज्य भी जीत लिया। युधिष्ठिर अपने चार प्रिय भाई और स्वयं को भी हार गए। उनका सब कुछ चला गया, कुछ भी शेष नहीं रह गया। इसीलिए जब युधिष्ठिर वो खेल रोकने लगे तब दुष्ट कौरवों ने द्रौपदी को दांव पर लगाने का सुझाव दिया। युधिष्ठिर के उसके लिए मना करने पर दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी और उसके केश पकड़कर उसे भरी सभा में लाने के लिए कहा। जब दुशासन द्रौपदी के केश पकड़कर उसे भरी सभा घसीट कर ले जा रहा था तब द्रौपदी ने वहाँ उपस्थित पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, रति, महारथियों इनसे सहायता के लिए विनंती की, परंतु कोई भी उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। तदुपरांत उसने अपने पांचों पतियों से विनती की, आक्रंदन किया। उस पर हो रहा अत्याचार रोकने के लिए उन्हें उद्युक्त करने का प्रयत्न किया, परंतु द्यूत में स्वयं को हराकर पांचों पांडव अबला समान नीचे सिर झुकाकर बैठे थे। दुशासन जब उसके वस्त्र पर हाथ डालने लगा तब उसने अनेक बार विनती की, पूरी राज्यसभा सिर नीचे झुकाए बैठी थी। तब वह स्वयं ही दुशासन के चंगुल से स्वयं को छुड़वाने का प्रयत्न करने लगी। उसने अपनी लाज की रक्षा के लिए दांतों से अपना आंचल जोर से पकड़ लिया था, परंतु वह उसके लिए असमर्थ सिद्ध हो रही थी। उसकी शक्ति दुशासन का प्रतिकार करने के लिए कैसे टिकेगी? उसकी दांतों से आंचल छूट गया। तब अपना शील बचाने के लिए दूसरा कोई भी पर्याय शेष नहीं है। ये ध्यान में आने पर उसे प्राण सखा श्री कृष्ण का स्मरण हुआ। परंतु वो यहाँ कहाँ? वो तो द्वारका में है, इसी क्षण कैसे पहुँचेगा, कैसे मेरी लाज की रक्षा करेगा? तब भी द्रौपदी ने अत्यंत आर्त भाव से श्री कृष्ण को पुकारा। संकट में घिरे गजेंद्र ने जिस आर्तता से भगवान श्री विष्णु को पुकारा, उसकी तुलना में अनेक अनेक गुना अधिक आर्तता से द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। द्रौपदी की वह आर्तता इस क्षण हम अनुभव करेंगे। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को अंतकरण से अत्यंत ही आर्तता से पुकारा। द्रौपदी अत्यंत आर्त भाव से पुकारने लगी, कृष्णा कृष्णा, हे कृष्णा, दौड़ो भगवान। अपनी इस कृष्णा को, द्रौपदी को केवल और केवल आप ही बचा सकते हो। हे केशव, इन कौरवों के दुष्ट चक्र में तुम्हारी ये कृष्णा घेर ली गई है। हे गोविंदा, यहाँ इस कुरुवंश की सभा में तुम्हारी इस बहन का ये घोर अपमान करने का जो षड्यंत्र है, वो इन दुष्ट कौरवों ने रचा है। त्रेता युग में जिस प्रकार तुमने सीता को दुष्ट रावण से छुड़ाया था, उसी प्रकार इस द्वापर युग में भी आप ही इस द्रौपदी की लाज बचाए। हे दयानिधान, मैं आपकी शरण आई हूँ। हे चक्रपाणि, इस भूतल पर इस सती की शील रक्षा के लिए, मुझे बचाने के लिए आपके अतिरिक्त कोई शेष नहीं अनंता। अब मेरी अधिक परीक्षा न ले भगवान। हे द्वारकाधीश, जहाँ भी हो वहाँ से शीघ्र दौड़े आओ, इस द्रौपदी की लाज रखो। हे यदुनाथा, हे मधुसूदन, देर न करो, दौड़ो कृष्ण दौड़ो। जिस भगवान को चींटी के पैरों की घुंघरुओं की भी आवाज़ सुनाई देती हो, उस करुणाकर को द्रौपदी की यह आर्त पुकार क्यों नहीं सुनाई देगी? अंतकरण की पुकार भगवान तुरंत सुनते हैं। द्रौपदी की यह आर्त पुकार भगवान तक पहुंच गई। श्री कृष्ण को द्रौपदी की उस चिंदी का स्मरण हुआ। द्रौपदी के समर्पण युक्त चिंदी का ऋण चुकाने का यही समय है, ऐसा विचार कर श्री कृष्ण उसी क्षण द्रौपदी की पुकार सुनकर दौड़े आए। श्री कृष्ण ने चिंदी का ऋण चुकाने के लिए उसके वस्त्र को बढ़ाकर द्रौपदी के शील की रक्षा की। श्री कृष्ण की कृपा से द्रौपदी की साड़ी अनंत अनंत गुना बढ़ा दी। दुशासन जितना वस्त्र खींचता जाता, वह साड़ी बढ़ती ही जाती। देखते ही देखते वहां वस्त्र का ढेर लग गया। 10 हाथियों का बल जिसमें था, ऐसे उस शक्तिशाली दुशासन के हाथ थक गए। परंतु वह द्रौपदी के वस्त्र हरण में असफल रहा। कुरुकुल की राज्यसभा में उपस्थित सभी लोग द्रौपदी के इस भगवत भक्ति का ये अद्भुत चमत्कार देख रहे थे। अंत में दुशासन लज्जित हो गया। इस प्रकार भक्तवत्सल श्री कृष्ण ने अपने भक्त की द्रौपदी की लाज रखी। धन्य है ये भक्तवत्सलता। भगवान हमें इसे सिखा रहे। भगवान स्वयं कभी करावनहार होते हुए भी उसके भक्तों ने जो जो भी उसके लिए किया है उसका वो स्मरण रखकर भक्त के ऋणी हो जाते हैं। भक्त यदि थोड़ा भी कुछ करे तो वह उस ऋण को चुकाने का अवसर ढूंढते रहते हैं। इस प्रसंग में द्रौपदी की आर्तता से स्मरण करने पर श्री कृष्ण को द्रौपदी द्वारा बांधी गई चिंदी का स्मरण हुआ। उसी चिंदी का ऋण चुकाने के लिए वो तुरंत दौड़े आए। एक छोटी सी चिंदी का ऋण चुकाने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अखंड वस्त्र की आपूर्ति की, उसकी लाज की रक्षा की। भगवान को और कितना करना चाहिए अपने भक्तों के लिए। भगवान की अपने भक्त के प्रति अपार प्रीति जो है उसकी कोई सीमा ही नहीं है। जो भगवान अपने भक्त को अत्यंत थोड़ा सा भी ऋण चुकाने के लिए अखंड तत्पर रहते हैं, उस दयानिधान भगवान ने हम सभी के लिए कितना कितना किया है, और वो भी एक ही जन्म में नहीं, वो तो जन्म जन्म से हमारे लिए कर रहे हैं। ऐसे भगवान का हम पर कितना प्रचंड ऋण है, इसकी तो हम गिनती भी नहीं कर सकते। वास्तव में भगवान के ऋण में रहने समान दूसरा भाग्य क्या होगा? व्यावहारिक जीवन में कुछ कारणवश जैसे अधिकोष से ऋण लेने पर यदि हम उसे चुका न पाए तो वो बढ़ता ही चला जाता है और हम ऋण में डूब जाते हैं। फिर घर द्वार सब जब्त कर लिया जाता है, लौकिक दृष्टि से सर्वस्व जब्त हो जाता है, अपना कुछ भी शेष नहीं रहता, सब कुछ अधिकोष को देना होता है। वैसे ही भगवान ने हमारे लिए जो जो किया है, जो भी हमें दिया है, और आज भी वो हमारे लिए जो भी कर रहे हैं, जो हमें दे रहे हैं, वह उनका हम पर ऋण ही है। ऐसे भगवान का प्रचंड ऋण चुकाने में हम असमर्थ हैं। फिर हमें क्या करना है? उसके लिए हम भगवान से ही भावपूर्ण प्रार्थना करेंगे। हे भगवान, आपका ये ऋण हम पर इतना बढ़ने दे कि आपको ही हम पर जप्ती लानी पड़े। आप हमें जप्त कर ले भगवान, हमारा सर्वस्व आपके अधीन होने दे। हमारा अहंकार, हमारा कर्तापन सब नष्ट होकर हमें आपके चरणों में संपूर्ण रूप से समर्पित करवा ले। इसलिए कि आपका ये ऋण अर्थात हम पर आपकी कृपा है, और केवल कृपा ही है। उस कृपा निदान भगवान की ये ऋण रूपी कृपा हम पर अखंड रूप से होने के लिए हम अविरत भगवान के सान्निध्य में रहेंगे, उनके अखंड अनुसंधान में रहेंगे, सतत अपने साथ उनका अस्तित्व अनुभव करेंगे। उनकी कृपा की, उनकी लीलाओं की हम अखंड अनुभूति लेते रहेंगे। अभी का ये प्रसंग सुनते समय अपने अंतकरण में आर्तता रूपी पंखुड़ी अभी खिली होगी, आप अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए, भगवान अब अगली भक्तिमय पंखुड़ियाँ कैसे खोल रहा है वो हम अनुभव करेंगे। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रत्येक संकट के समय पुकारा और श्री कृष्ण ने उसके कदम कदम पर सहायता की। उसी का एक और सुंदर प्रसंग है। सदैव पांडवों का द्वेष कर
उनसे उनका राज्य छीनने के लिए कौरवों ने छल से द्यूत क्रीड़ा। इसमें पांडवों का राज्य, संपत्ति, सब कुछ छीन लिया। अपना सर्वस्व हारने के उपरांत पांडवों को 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। पांडवों को वनवास भेजकर दुर्योधन को समाधान नहीं हुआ था। वो पांडवों पर बारीकी से ध्यान रखे हुए था। उनकी प्रत्येक गतिविधियों की वो जानकारी ले रहा था। पांडवों को विविध संकटों का सामना करने के लिए बाध्य कर रहा था। वनवास के समय महाबलशाली पांचों पांडव द्रौपदी सहित इस वन से उस वन ऐसे भटक रहे थे। अनेक बार कंदमूल खाकर अथवा कभी कभी बिना कुछ खाए भी उन्हें दिन बिताने पड़ रहे थे। इस क्लेश से द्रौपदी अत्यंत दुखी हो गई। इस भूख प्यास के कष्ट से मुक्त होने के लिए उसने काशी में भगवान सूर्य नारायण की मनोभाव से आराधना की। द्रौपदी की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य नारायण प्रकट हुए। उन्होंने उसे वर मांगने के लिए कहा। द्रौपदी बोली, हे सूर्य नारायण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो इस विपत्ति के समय हमारे भोजन की समस्या सुलझाए। तब भगवान सूर्य नारायण ने द्रौपदी को एक अक्षय पात्र दिया। सूर्य नारायण बोले, हे द्रौपदी, प्रतिदिन जब तक तुम भोजन नहीं करोगी तब तक तुम्हारे पास जितने लोग आएंगे वे इस अक्षय पात्र के भोजन से तृप्त होकर जाएंगे। केवल तुम्हारा भोजन होने के उपरांत प्रतिदिन ये पात्र रिक्त हो जाएगा। इसके साथ ही ये अन्न प्रत्येक दिन केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही मिल सकता है। इस प्रकार सूर्य नारायण ने द्रौपदी पर कृपा कर उसे दिव्य अक्षय पात्र प्रदान किया। इस अक्षय पात्र से द्रौपदी सहित पांडवों की भूख प्यास दूर हो गई। परंतु इतने करने पर ही अन्न पानी के संकट की श्रृंखला समाप्त नहीं हुई थी। उन्हें एक नए संकट का सामना करना पड़ा। एक बार दुर्वासा ऋषि अपने 10 सहस्त्र शिष्यों के साथ पांडवों के पास आए। इसके पीछे दुर्योधन की कुटिल चाल थी। दुर्योधन ने ही उन्हें वहां भेजा था। उसे पता था कि दुर्वासा ऋषि और उनके 10 सहस्र शिष्यों के भोजन की व्यवस्था पांडव नहीं कर पाएंगे। उनका योग्य आदरातिथ्य करने में पांडव असमर्थ होंगे। और उससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि उन्हें शाप देंगे। पांडवों का और द्रौपदी का जब भोजन हो चुका होगा ऐसा समय साधकर दुर्वासा ऋषि पांडवों के पास आए। दुर्वासा ऋषि को देखकर युधिष्ठिर ने उन्हें भावपूर्ण नमन किया। अतिथि रूप में आए दुर्वासा ऋषि को और उनके सभी शिष्यों को उन्होंने अपने श्रेष्ठ आसन पर आदरपूर्वक बिठाया। तदुपरांत उनका विधिपूर्वक पूजन किया। उसके पश्चात दुर्वासा ऋषि ने अपने आने का कारण बताया। वे बोले, हे युधिष्ठिर, हम सभी को बहुत दूर यात्रा के लिए जाना है। हमारे पास जो शिदा थी वो समाप्त हो गई। सभी को भूख लगी है, हमारे भोजन की कुछ व्यवस्था करो। ऐसे कहकर वो भोजन से पूर्व स्नानादि नित्य कर्म करने के लिए अपने शिष्यों के साथ गंगा तट की ओर चले गए। युधिष्ठिर धर्म का कठोर पालन करने वाले थे। धर्म पालन के लिए अतिथि सत्कार के रूप में दुर्वासा ऋषि सहित सभी शिष्यों को भोजन के लिए आमंत्रित करना आवश्यक था। उस समय द्रौपदी का भोजन हो चुका था, इसीलिए सूर्यदेव द्वारा दिए गए पात्र से भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकती थी। तब द्रौपदी सहित सभी पांडव विचार करने लगे, दुर्वासा ऋषि के भोजन की व्यवस्था कैसे करें? बड़ा धर्म संकट सबके सामने था। दुर्वासा ऋषि का क्रोधी स्वभाव जगत विख्यात था, इसीलिए द्रौपदी चिंता में पड़ गई। अब यदि दुर्वासा ऋषि को हम भोजन नहीं दे सके तो निश्चित ही वो हमें शाप देंगे। इस विचार से वो भयभीत हो गई। इस बड़े संकट से बचने के लिए उसे कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, कुछ सूझ नहीं रहा था। उसे भय लगने लगा। उसे अपने प्राणप्रिय सखा और भगवान अर्थात श्री कृष्ण का स्मरण होने लगा। इस बड़े संकट से मुक्त होने का मार्ग दिखाने के लिए वो श्री कृष्ण से आर्तता से प्रार्थना करने लगे। भक्तों का भय हरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को इस आपत्ति से छुड़वाने के लिए अत्यंत श्रद्धा से और आर्तता से वो विनती करने लगी। आई हुई आपत्ति के विषय में उसने भगवान को पूरा वृत्तांत निवेदन किया। द्रौपदी बोली, हे कृष्ण, दुखियों का दुख दूर करने वाले, हे जगदीश्वर, शरणागतों की रक्षा करने वाले, हे मधुसूदन, आप ही समस्त प्रजा का पालन करने वाले परम परमेश्वर है। हे परमात्मा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे वरदाता अनंत, शीघ्र आओ। जिसका आपके सिवाय दूसरा कोई भी सहायक नहीं, तारणहार नहीं, ऐसे ही इस अपनी असहाय सखी की आप सहायता करो। हे पुराण पुरुष, आपने जिस प्रकार दुशासन के अत्याचार से मुझे बचाया था, उसी प्रकार इस महान संकट से आप भी मुझे बचाए। अपनी असहाय सखी की आप सहायता करो। हे नारायण, हे रमा रमण, हे मधुसूदन, हे मनमोहन, हे करुणागन, मैं आपके शरण आई हूँ। हे श्रीहरि, हे बलसागर गोविंद, आप दौड़े आओ, दौड़े आओ। हे भगवान, हे परमानंद, आपके श्री चरणों में शरण आकर मैं वंदन करती हूँ।
द्रौपदी की ये आर्त पुकार श्री कृष्ण तक पहुंच गई। श्री कृष्ण भगवान वो तो साक्षात परमात्मा है, वे सदा सर्वत्र निवास करते हैं, वे चराचरवासी और अंतर्यामी हैं। अपनी प्रिय सखी की परम भक्त द्रौपदी की पुकार सुनकर वे तुरंत ही उस स्थान पर पहुंच गए। प्रत्यक्ष श्री कृष्ण को अपने समक्ष देख
द्रौपदी के प्राण लौटाए। मानो संकट सागर में डूबती हुई द्रौपदी को खरा आधार मिल गया। श्री कृष्ण को देखकर उसे अत्यानंद हुआ। सभी पांडव उनके आसपास एकत्र हो गए। आते आते ही द्रौपदी को कुछ बोलने का अवसर न देते हुए भगवान ने एक लीला रची। श्री कृष्ण अधीरता से द्रौपदी से बोले, हे याज्ञसेनी, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम पहले मुझे कुछ खाने को दो। मैं बहुत दूर से थककर आया हूँ। श्री कृष्ण के ये बोल सुनकर द्रौपदी व्याकुल होकर बोली, हे श्री कृष्ण, अरे मैं अभी भोजन करके उठी हूँ, इसलिए अब उस अक्षय पात्र में कुछ भी शेष नहीं। इसलिए मैं दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों के लिए भी भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकती। ये तो बड़ा संकट है और इसीलिए मैंने आपको पुकारा। और अब आपको भोजन कहाँ से दूँ अनंता? अब आप ही देखिए क्या करना है दया घना। मैं आप पर सर्व भार डाल रही हूँ। और उसने दुर्वासा ऋषि के आने के संदर्भ में सर्व वृत्तांत श्री कृष्ण को सुनाया। वे ही इस संकट से छुड़वाएंगे उसकी उसे श्रद्धा थी। श्री कृष्ण बोले, द्रौपदी, मुझे वो अक्षय पात्र तो दिखाओ। द्रौपदी वो पात्र लेकर आई। श्री कृष्ण ने उसे अपने हाथ में लिया और उसे देखने लगे तो उस पात्र में सब्जी का एक पत्ता चिपका हुआ दिखाई दिया। उन्होंने उसे लिया और अपने मुख में डाल दिया और वो बोले, अहम् ब्रह्मास्मि, इस पत्ते से संपूर्ण जगत की आत्मा यज्ञ भोक्ता परमेश्वर तृप्त हो। उसी समय यहाँ गंगा के तट पर स्नान के लिए गए दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यगण भोजन करने की तृप्ति अनुभव कर रहे थे। उन सभी को लग रहा था कि उनका पेट भर गया है। वे विचार करने लगे, हम भोजन किए समान इतने तृप्त हो गए हैं तो पांडवों के यहाँ जाकर भोजन कैसे करेंगे? हम तो वहाँ कुछ भी खा नहीं सकेंगे। अंत में वे बिना पांडवों के पास गए, वहाँ से ही अपनी यात्रा के लिए आगे निकल गए। तभी श्री कृष्ण ने सहदेव से दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को बुलाने के लिए कहा। जब सहदेव गंगा तट पर पहुंचा तो उसे वहां दुर्वासा ऋषि दिखाई नहीं दिए। गंगा तट पर अन्य तपस्वियों से उन्हें ज्ञात हुआ कि दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य अगले प्रवास के लिए गए थे। सहदेव ने पुनः आकर ये बात सभी को बताई। इस प्रकार द्रौपदी की कृष्ण भक्ति के कारण पांडव एक बड़े संकट से सहजता से बच गए। श्री कृष्ण द्रौपदी की पुकार पर दौड़े आए और पांडवों को दुर्वासा ऋषि की क्रोधाग्नि से बचाया। पांडवों और द्रौपदी के माध्यम से उन्होंने अपनी शरणागत वत्सलता का जो परिचय है वो संपूर्ण जगत को दिया। इस प्रसंग से हमें क्या बोध लेना है? भगवान पूर्ण रूप से भक्त के अधीन होते हैं। भक्त की आर्त प्रार्थना भगवान के चरणों में अवश्य पहुंचती है। संकट काल में श्री कृष्ण ने कैसी सुंदर लीला रची, ये हम अनुभव कर पाए। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। जिसके सब्जी का एक छोटा पत्ता खाने पर संपूर्ण विश्व की आत्मा तृप्त होती है, ऐसे भगवान का सामर्थ्य कितना होगा। ऐसे कृपावत्सल करुणाकर भगवान को पुकारने में हम कम पड़ते हैं। ये इस प्रसंग से भगवान ने हमें पुनः एक बार दिखा दिया। इस प्रसंग से और एक बात सीखने मिलती है, वो है भगवान भक्तिभाव के भूखे होते हैं। द्रौपदी ने भगवान को भोजन देने में असमर्थता व्यक्त की, तब भी हम श्री कृष्ण को खाने के लिए कुछ दे नहीं सकते, इसका उसे अंतकरण में दुख था। अतिथि को रिक्त हाथों लौटाना नहीं, ये लगन और असहायता प्रतीत हो रही थी। इन सभी की तुलना में उसके अंतर का भगवत प्रेम, भगवान के प्रति उसका आंतरिक भाव, ये महत्वपूर्ण था। वास्तव में सब्जी के उस छोटे पत्ते के कारण नहीं, अपितु द्रौपदी के आंतरिक शरणागत भाव के कारण भगवान तृप्त हो गए थे। ये इस प्रसंग से सीखने मिलता है। हम सब भी द्रौपदी समान संपूर्ण रूप से शरणागत भाव से भगवान को पुकारेंगे। द्वार पर खड़े आपत्काल का सामना करना है तो सर्व सामर्थ्यशाली भगवान को पुकारे बिना हमारे लिए और कोई उपाय नहीं। शरणागति का और आर्तता से भगवान को पुकारने का संस्कार हम अपने अंतर्मन पर करेंगे। इससे उस अमुक प्रसंग में क्या करना है, ये गुरुदेव ही हमें किसी न किसी माध्यम से सिखाने वाले हैं। ईश्वर ने इस प्रसंग द्वारा हमारे अंतकरण की शरणागति रूपी सुंदर पंखुड़ी खोल दी है। इस शरणागति रूपी दिव्य पंखुड़ी की सुगंध सर्वत्र फैली हुई है। अब आगे वे और कौन सी पंखुड़ी खोलने वाले हैं, आइए इसका भी उत्सुकता से अवलोकन करें। उसके लिए और एक प्रसंग हम जान के लेते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के उपरांत द्रौपदी अपने कक्ष में उदास बैठी थी। उसे अभी तक घटित सर्व कठिन प्रसंगों का स्मरण होने लगा। महाभारत का युद्ध तो समाप्त हुआ है, पर जीवन में कितने कठिन प्रसंग हुए हैं। वस्त्र हरण के कठिन प्रसंग का स्मरण होते ही उसके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे। उसे इस प्रकार उदास देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे पूछा, सखी द्रौपदी, तुम ऐसी उदास क्यों बैठी हो? तुम्हें तो आनंद होना चाहिए। भरी सभा में तुम्हारी लाज बच गई थी। तुम्हें आनंद होना चाहिए क्योंकि जिस दुशासन ने तुम्हारा वस्त्र हरण करने का प्रयत्न किया, उस दुशासन के वध से तुम्हारे प्रतिशोध की ज्वाला अब शांत हो गई है। भगवान श्री कृष्ण से तब द्रौपदी कहने लगी, आप सत्य कह रहे हे गोविंद, आप तो साक्षात परमेश्वर हैं। मैं अपना दुख आपको नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? अपने जीवन के कुछ कठिन प्रसंग मैं भुला नहीं सकती। उनका स्मरण होने पर भी मैं कांप जाती हूँ। हे श्री कृष्ण, अग्नि से मेरी उत्पत्ति हुई है। मैं महापराक्रमी पांडवों की पत्नी हूँ, दृष्टद्युम्न की मैं बहन हूँ, आपकी मैं सखी हूँ। आप पर तो मेरा पवित्र अनुराग है, आप पर मेरा अधिकार है, मेरी रक्षा करने में आप समर्थ हैं। आप मेरे रक्षक होते हुए मेरी ऐसी दशा क्यों हुई? मेरे जीवन में इतने कठिन प्रसंग क्यों आए? हे अनंत, इन सब कारणों से मैं उदास हो गई हूँ। हे गोविंद, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो सब कुछ ज्ञात है। भगवान श्री कृष्ण ने उसके बोलने पर केवल स्मित किया। श्री कृष्ण की ओर देखते हुए थोड़े रोषपूर्ण स्वर में द्रौपदी ने कहा, हे भगवान कृष्ण, आप तो सर्वव्यापी हैं, आप मुझे बताइए, जब वस्त्रहरण के लिए दुशासन मेरी ओर आ रहा था, तभी आपने आकर दुशासन को क्यों नहीं रोका? हे कृष्ण, मुझे विश्वास है, आप वहां होते तो वह मुझे हाथ भी नहीं लगा पाता। जब दुशासन मेरे केश पकड़कर भरी सभा में वस्त्रहरण करने के लिए मुझे घसीटते हुए ले जा रहा था, तब आपने उसे क्यों नहीं रोका? उसी समय आपने मेरी रक्षा क्यों नहीं की? इतना विलंब क्यों किया कृष्णा? अरे, यदि आपने उस समय दुशासन को रोका होता तो महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध होता ही नहीं। बताइए भगवान, ऐसा क्यों हुआ? आपने इतना विलंब क्यों किया? द्रौपदी के इस प्रश्न का भगवान श्री कृष्ण ने उसे क्या उत्तर दिया होगा? भगवान ने उसे दिए हुए उत्तर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण की द्रौपदी के लिए कार्यरत हुई ईश्वरी वाणी अब हम सुनेंगे, अपने अंतर्मन पर वो अंकित करेंगे। द्रौपदी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने मधुर स्मित करते हुए उससे कहा, प्रिय सखी, ऐसा कैसे कह रही हो? तुम्हारे पुकारते ही मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तत्परता से आ पहुंचा। जब दुशासन तुम्हारे केश पकड़कर तुम्हें भरी सभा में लेकर जा रहा था, तब तुमने सभा में उपस्थित सर्वरथी और महारथियों से सहायता मांगी। उस समय तुम्हारा उन सबकी शक्ति पर विश्वास था। जब तुम्हें उनकी सहायता नहीं मिली, तब तुम्हें स्वयं की शक्ति पर विश्वास था। तुम्हारे दांतों पर तुम्हें अधिक विश्वास था, और इसीलिए उस समय तुमने अपने दांतों से अपना आंचल पकड़ा और दुशासन से लड़ी। परंतु इतनी कठिन परिस्थिति में भी तुम्हें मेरा स्मरण नहीं हुआ। जब तुम्हें सहायता करने के लिए उस सभा में कोई भी और तुम्हारे पति भी समर्थ नहीं थे, और दांतों में पकड़ा हुआ आंचल भी छूटने लगा, तब तुम्हें मुझे बुलाने का एकमात्र विकल्प ध्यान में आया। तब तुम्हें मेरा स्मरण हुआ, तुमने मुझे पुकारा। मुझे आर्तता से पुकारते ही मैंने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया, तुरंत तुम्हारी रक्षा के लिए दौड़ पड़ा। तुमने मुझे पहले ही पुकारा होता तो मैं पहले ही आ गया होता। दुशासन जब तुम्हारा वस्त्र हरण करने के लिए आगे आ रहा था, तब यदि तुमने एक बार आर्तभाव से मेरा स्मरण किया होता, अंतकरण से मेरा स्मरण किया होता, तो मैंने उसी क्षण हस्तक्षेप किया होता और तुम पर ये कठिन प्रसंग मैं आने ही नहीं देता। हे द्रौपदी, मैं वैकुंठ अथवा द्वारका इनमें निवास करता हूँ, ऐसा समस्त जीव मानते हैं। पर हे कृष्णे, ऐसा नहीं है। हे सखी, मैं समस्त प्राणी मात्र के हृदय में, चराचर के कण में वास करता हूँ। जो अंतकरण से मेरा स्मरण करता है, कठिन प्रसंग में मेरे पास आता है, उसके लिए मैं तुरंत दौड़ा आता हूँ। मेरे भक्तों को सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि जब जब आप पर कठिन प्रसंग आता है, तब आर्तता से मेरा स्मरण करें। मैं आपकी पुकार की ही प्रतीक्षा करता हूँ। भक्तों के पुकारने पर मैं उसी क्षण दौड़कर आता हूँ और उन्हें उस संकट से बाहर निकालता हूँ। हे पांचाली, मैं अपने भक्तों को दिया हुआ वचन कभी नहीं तोड़ता। हे कृष्णे, भले ही आकाश फट जाए, समुद्र सूख जाए, हिमालय की बर्फ पिघल जाए, परंतु मैं अपना वचन, मेरी भक्त वत्सलता कभी नहीं छोड़ता। हे द्रौपदी, मेरे वचन कभी असत्य नहीं होते। कृपावत्सल भगवान का ये उत्तर सुनकर द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और उनका भक्तों के प्रति प्रेम ध्यान में आया। जगतपति श्री कृष्ण का ये वचन सुनकर द्रौपदी के अंतर में उमड़ी सभी शंका कुशंकाओं का और प्रश्नों का समुद्र शांत हो गया। उसने उन्हें दोनों हाथ जोड़कर भावपूर्ण और कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम किया। द्रौपदी कहने लगी, हे केशव, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। बार बार उनके चरणों में वो कृतज्ञता पूर्वक वंदन करने लगी। इससे हमें ध्यान में आता है कि भगवान भक्तों के बंधन में बंधे होते हैं, भक्तों की आज्ञा में होते हैं, इसीलिए उनके बताए बिना और सहायता मांगे बिना वे सहायता कभी नहीं कर सकते। वे भक्त वत्सल है, वे अपने भक्तों का दुख कष्ट कैसे देख पाएंगे, अपितु अपने भक्त को हो रहा कष्ट देखकर उन्हें अधिक कष्ट होता है। परंतु साक्षी भाव ये भगवान का स्थायी भाव है। सर्व अंतर्यामी भगवान सब समझते हैं, तब भी वे सबकी ओर साक्षी भाव से देखते रहते हैं। जब तक हम पुकार कर भगवान को उनके उस स्थायी भाव से जागृत नहीं करते, तब तक वे हमारी सहायता कैसे करेंगे? वे तो अपने भक्त की पुकार की प्रतीक्षा में सदैव रहते हैं। कब मेरा ये भक्त मुझे पुकारेगा और मैं उसकी सहायता करूँगा, उसकी रक्षा करूँगा, यही उनका विचार रहता है। परमेश्वर कृपावत्सल है, दयानिधान है। हमें ऐसे लगता है कि कठिन प्रसंग आने पर हमें भगवान का पहले स्मरण होता है, परंतु यहाँ हमारा मन हमें फंसाता है। कठिन प्रसंग आने पर पहले हम तनावग्रस्त होते हैं, कर्तापन लेकर हम उससे मार्ग निकालने का अलग-अलग प्रकार से प्रयत्न करते हैं। हम पर कठिन प्रसंग आने पर हम किसी संकट में हो अथवा दुख भोगते हैं, इतना ही नहीं, छोटे छोटे संघर्ष के प्रसंगों में भी हमें औरों से अपेक्षा रहती है कोई हमारी सहायता करे, ऐसे हमें लगता है। यदि कोई सहायता न करे तो मन को दुख होता है, अकेलापन लगता है, परंतु उस समय सर्व सामर्थ्यशाली भगवान का हमें स्मरण नहीं होता, हम तुरंत उनकी शरण नहीं जाते। संकट का सामना हम भगवान को साथ लेकर नहीं करते। जब सभी प्रयत्न करने पर भी हमें मार्ग नहीं मिलता, तब अपनी असमर्थता का हमें भान होता है और हम घुटने टेक देते हैं। फिर हमें भगवान का स्मरण होता है और उनकी शरण में जाते हैं। भगवान ये सब देखते रहते हैं, फिर वे कहते हैं, ठीक है, तू करता है तो फिर कर, जब मुझे बुलाएगा तभी मैं आऊंगा, नहीं तो तुम्हारे कर्मों के अनुसार निर्धारित फल तुम्हें मिलेगा। वास्तव में तो ये कर्मफल उन्होंने ही निर्धारित किया होता है। हम ये भूल जाते हैं कि लीलाधारी भगवान की ही ये सब लीला है। सर्व सृष्टि ही जिनके अधीन है, जिनके नियंत्रण में है, जो प्रत्येक को श्वास की आपूर्ति करते हैं, जो सर्व जीव सृष्टि की चेतना है, ऐसे भगवान को छोड़कर हम स्वयं पर ही अधिक विश्वास रखते हैं, क्या ये हमारा अज्ञान नहीं? आज तक हमारे जीवन में क्या कभी ऐसा हुआ है किसी प्रसंग का हमें स्मरण हो रहा है जहाँ हमने प्रीति के मूर्तिमंत रूप परम कृपालु गुरुदेव जी से प्रार्थना की और उन्होंने हमारी सहायता नहीं की? इसका अवलोकन करने के लिए हम पीछे मुड़कर अपने जीवन के प्रसंगों की ओर अंतर्मुख होकर देखने का प्रयत्न करें तो हम अनुभव कर पाएंगे। प्रत्येक बार हमारे अनजाने में गुरु लीला कैसे घटी है? गुरु लीला से ही हम जीवित हैं, संकट मुक्त हैं, साधनारत हैं, ये स्पष्ट होता है। इसीलिए साक्षात गुरुदेव की द्रौपदी के समान संपूर्ण समर्पण से हम शरण में जाएंगे। कर्तापन त्याग कर सर्वप्रथम गुरुदेव जी को पुकारेंगे और उनकी दैवी लीला का हम आनंद लेंगे। आज के भाव सत्संग में भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त और सखी द्रौपदी के जीवन के कुछ प्रसंग भगवान ने उजागर किए हैं, जो प्रसंग हमने इससे पूर्व भी सुने हैं, परंतु उन प्रसंगों के भाव आर्तता साधना के स्तर पर आत्मसात करने का समय अब आ गया है। उपरोक्त सर्व प्रसंगों में एक बात प्रकर्ष से भान होता है, द्रौपदी के जन्म से उसका संपूर्ण जीवन केवल और केवल संघर्षमय और दुखमय था, परंतु उसके सखा भगवान श्री कृष्ण उसके एकमात्र और परमोच्च आधार थे। द्रौपदी के सभी प्रसंगों में इस बात का प्रकर्ष से भान होता है। उसके जीवन में उसे भगवान श्री कृष्ण का जितना सान्निध्य मिला उतना ही आनंद वो अनुभव कर पाती थी। उसकी प्रत्येक पुकार पर दौड़कर आने वाले उसके नेत्रों में दुख के अश्रु आने पर तुरंत धीमे से पोंछने वाले सखा भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की शक्ति थे, उसका आनंद थे। साधारणता इतने संघर्षमय जीवन से मनुष्य तो निराश हो जाता है, उसकी जीने की भी इच्छा शक्ति शेष नहीं रहती। विवशता से वो निराश हो जाता है, उसका ईश्वर से विश्वास उठ जाता है, मन में विकल्प निर्माण होते हैं। परंतु द्रौपदी का वैसा नहीं हुआ। जीवन के प्रत्येक संघर्षमय प्रसंग का सामना करने का उसने प्रयत्न किया। अनेक बार उस पर बहुत कठिन प्रसंग आए, संकटों पर संकट आए, तब भी एक क्षण के लिए भी उसकी भगवान श्री कृष्ण पर श्रद्धा तिल मात्र भी कम नहीं हुई। वो अविचल रही। श्रद्धा और आर्तता हो तो द्रौपदी के समान। अच्छे प्रसंगों में भी हमारी ईश्वर पर कितनी श्रद्धा है ये समझ नहीं पाते, परंतु जब संकट रूपी परीक्षा होती है तो ऐसे परीक्षाओं से ही हमें अपनी ईश्वर के प्रति श्रद्धा समझ में आती है। द्रौपदी के ये प्रसंग हमें आपातकाल का सामना करने की बड़ी सीख देते हैं। संकटों में ही खरी शक्ति, भक्ति और श्रद्धा की परख होती है। ये ध्यान में रखकर हम भी आने वाले आपातकाल में द्रौपदी के समान भक्ति कर दृढ़ अविचल श्रद्धा से तर जाएंगे। द्रौपदी के समान ईश्वर को अपना सखा और सर्वस्व मानकर प्रतिक्षण उन्हें आर्तता से पुकारेंगे। द्रौपदी समान आर्त भक्ति तो हम में नहीं है, परंतु उसकी आर्त भक्ति हमारे समक्ष उजागर होने पर हम में भी वैसी भक्ति निर्माण हो, ऐसा हम में से प्रत्येक को अभी लग रहा होगा। ये आर्त भक्ति हम में कब और कैसे निर्माण होगी? जब हम नियमित रूप से साधना के प्रयत्न करते रहेंगे, भाव भक्ति की वृद्धि के लिए प्रार्थना बढ़ाएंगे, तब उन प्रयत्नों का संस्कार हमारे अंतकरण पर होकर वो आर्त भक्ति हम में निर्माण होने में सहायता होगी। द्रौपदी के इस आर्त भक्ति का आदर्श लेकर हम नियमित जो कृतियां करते हैं, उस प्रत्येक कृति में वो आर्तता अनुभव करने का हम प्रयत्न करेंगे। इसके आगे हम जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसी प्रत्येक प्रार्थना में वह आर्तता अनुभव करने का हम प्रयास करेंगे। दिन भर में हम जो प्रार्थना करते हैं, ऐसी प्रार्थना में अपनी असमर्थता जानकर, कर्तापन का त्याग कर, पूर्ण शरणागत भाव से भगवान से, गुरुदेव जी से भावपूर्ण प्रार्थना करेंगे। हे भगवान, मैं कितनी असमर्थ हूँ, ये करने की मेरी क्षमता नहीं है, आप ही मुझसे करवा ले, ये आप मुझसे करवा ले, इसके लिए आर्तता भी आप ही मुझ में निर्माण करें। मैं पूर्ण रूप से आपकी शरण आई हूँ। ऐसे अपनी असमर्थता भगवान से व्यक्त कर अपने में आर्तभाव बढ़ाएंगे। आज से अपनी प्रत्येक प्रार्थना द्रौपदी समान याचक भाव से, आर्तभाव से कर अंतर मन पर आर्तभाव का संस्कार करेंगे। अब हम द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की महानता जानकर उसने की हुई श्री कृष्ण स्तुति सुनेंगे। इस स्तुति का प्रत्येक शब्द सत्य है। वह भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला का प्रमाण है। इस भाव से हम भी द्रौपदी समान शरणागत होकर भगवान श्री कृष्ण की भावपूर्ण स्तुति करेंगे। भावपूर्ण स्तुति के कोमल पुष्पों से हम भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चरण कमल अभी सजाएंगे। द्रौपदी कहती है, हे प्रभो, सृष्टि के प्रारंभ काल से सभी एकमात्र आपको ही संपूर्ण जगत के निर्माता, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और प्रजापति कहते हैं। हे मधुसूदन, आप ही साक्षात अपराजित श्री विष्णु हैं, आप ही पवित्र यज्ञ हैं, आप ही उसके यजमान हैं, आराधना करने योग्य श्रीहरि आप ही हैं। ऐसा जमदग्नि नंदन परशुराम जी का कथन है। हे पुरुषोत्तम, यश, ऋषि, देवता और पंचमहाभूत स्वरूप आप ही हैं। महर्षि कश्यप कहते हैं, महर्षि गण आपको क्षमा और सत्य का स्वरूप मानते हैं। सत्य से प्रकट होने वाला यज्ञ भी आप ही में है। हे भक्तवत्सल, हे नरश्रेष्ठ, ये संपूर्ण जगत आपके ही एक अंश में स्थित है। ये संपूर्ण विश्व आप में ही समाया हुआ है। आप ही सनातन पुरुष हैं। विद्या और तपस्या से संपन्न, तपसाधना युक्त जिनका अंतकरण होता है उस आत्मज्ञान से तृप्त महर्षियों में आप ही परमश्रेष्ठ हैं। निर्मल हृदय के महर्षियों के हृदय की स्फूर्ति भी आप ही हैं। हे पुरुषोत्तम, युद्ध में कभी भी पीठ न दिखाने वाले सर्व धर्मों से संपन्न पुण्यात्मा राजर्षियों का आश्रय भी आप ही है। हे भगवान, आप ही प्रभु हैं, सबके स्वामी हैं, आप ही सर्वव्यापी हैं, सबके आत्मा भी आप ही हैं। भगवान, आपकी ही शक्ति द्वारा सबको शक्ति प्राप्त होती है। आप ही जीवन, मृत्यु और कर्म के अधिष्ठाता है। लोक, लोकपाल, नक्षत्र, दसों दिशाएं, आकाश, चंद्र और सूर्य, ये सभी आप में ही प्रतिष्ठित है। हे महाबाहो, भूलोक के प्राणियों की मृत्यु परवशता, देवताओं की अमरता, संपूर्ण जगत का सर्व कार्य आप में ही प्रतिष्ठित है। हे भगवान श्री कृष्ण, हे मधुसूदन, स्तुति करने योग्य एकमेव आप ही है, कारण संपूर्ण प्राणी मात्रों के ईश्वर आप ही है। हे भगवान, मैं आपकी संपूर्ण शरण आई हूँ। द्रौपदी समान श्री कृष्ण की भावस्तुति करते हुए हम भी श्री कृष्ण परमात्मा के श्री चरणों में संपूर्ण शरण जाएंगे। भगवान, ये सब करते हुए कर्तापन नहीं लेते, वे अपनी माया का ऐसा पर्दा सभी पर डाल देते हैं कि वे अवतार हैं। यही सामान्य जीवों को समझ में नहीं आता, परंतु भगवान की भक्ति करने वाले जीवों को मात्र उसके दिव्यत्व की और अवतारत्व की अनुभूति आकर वे भगवान के श्री चरणों में संपूर्ण लीन हो जाते हैं, उनकी शरण जाते हैं। उनके अवतारत्व की अनुभूति लेने के कारण ही भक्तों का भगवान के प्रति परम प्रेम बढ़ता जाता है, प्रीति बढ़ती जाती है। उसी प्रकार श्री कृष्ण की सखी और परम भक्त द्रौपदी अपनी आर्त भक्ति द्वारा श्री कृष्ण के अवतारत्व और दिव्यत्व जानकर उनकी शरण गई। द्वापर युग समान ही आज इस कलयुग में भी श्री कृष्ण ही सूक्ष्म रूप में हर क्षण हमारे साथ होते हैं। द्रौपदी के समान श्री कृष्ण की भावपूर्ण स्तुति करते हुए हम भी श्री कृष्ण परमात्मा के श्री चरणों में संपूर्ण शरण जाएंगे। अब तक के भाव सत्संग में द्रौपदी की परम भक्ति का अनुभव करते हुए हम पूर्ण रूप से भक्तिमय हो गए। द्रौपदी के भक्तिमय प्रसंग सुनकर प्रत्यक्ष रूप से स्वयं में भी वो आर्तता निर्माण हो रही है, ऐसे हम अनुभूति ले रहे हैं। ये दिव्य प्रसंग हमारे अंतर्मन तक पहुंच गए हैं। भगवान को पुकारने के लिए द्रौपदी समान आर्तता हम सभी के हृदय मंदिर में अभी निर्माण हुई है। रोम रोम में हम आर्तता अनुभव कर रहे हैं। उस आर्तता से हम अनजाने में भगवान श्री कृष्ण को ही पुकार रहे हैं। उनके प्रति प्रचंड अपनापन, प्रचंड लगन अपने अंतकरण में निर्माण हुई है। आंतरिक भक्ति से वातावरण में दैवीय परिवर्तन हो रहे हैं। क्या वो हमारे ध्यान में आ रहा है? हम भी अनुभव करेंगे। हमें वातावरण में क्या परिवर्तन लग रहा है? वातावरण में साक्षात भगवान श्री कृष्ण तत्व कार्यरत हो गया है। ऐसा लगने लगा है मानो द्वापर युग का वातावरण इस कलयुग में पुनः अवतरित हो गया है। भाव सत्संग में प्रचंड मात्रा में कार्यरत हुए श्री कृष्ण तत्व की दिव्य अनुभूति लेते हुए हम श्री कृष्ण के दिव्य चरणों में स्तुति सुमन अर्पित करेंगे। जगतगुरु आदि शंकराचार्य द्वारा रची सर्वश्रेष्ठ और कर्णप्रिय स्तोत्रों में एक स्तोत्र है अच्युताष्टकम। अब हम इसी स्तोत्र द्वारा श्री कृष्ण परमात्मा की स्तुति करेंगे। इस अष्टक की स्तुति में प्रत्येक शब्द से एक रूप होंगे। हे अच्युत, हे केशव, हे नारायण, हे कृष्ण, हे दामोदर, हे वासुदेव, हे हरि, हम आपको अत्यंत भावपूर्ण नमन करते हैं। आपके चरणों में संपूर्ण शरणागत भाव से लीन होकर आपकी जय जयकार कर रहे हैं। हे श्रीधर, हे माधव, हे गोपिका वल्लभ, आपकी जय जयकार हो। हे सत्यभामा के पति, हे लक्ष्मीपति, हे राधिका के आराध्य देवता, हे लक्ष्मी निवास, आप परम सुंदर हो। हे नंद कुमार, हमारा चित्त आपके चरणों पर एकाग्र कर हम आपकी जय जयकार करते हैं। हे देवकी नंदन, आपकी जय जयकार हो। हे शंख चक्रधारी श्री कृष्ण, आप रुक्मिणी के परम प्रेमी हो। आप परम पूज्य आत्मस्वरूप है। हे कंस विनाशका, हमारी बुद्धि आपके चरणों में अर्पण करते हुए हम आपकी जय जयकार कर रहे हैं। हे मुरलीधर, आपकी जय जयकार हो। हे वासुदेव, हे गोविंद, हे अनंत, हे द्वारका के नाथ, हे द्रौपदी के रक्षक, आप हम पर कृपा करें। हमारी देह आपके चरणों में समर्पित करते हुए हम आपकी जय जयकार कर रहे हैं। हे कमलनयन श्रीहरि, आपकी जय जयकार हो। हे शंख चक्रधारी श्री कृष्ण, हे गोपिका वल्लभ, आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो कृष्णा, आपकी जय जयकार हो।
भगवान की कृपा से ये दिव्य भक्ति सत्संग संपन्न हुआ, इसलिए हम भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि कृतज्ञता व्यक्त करेंगे।